अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसमें क्या होता है, उसकी खुशी ज्यादा ही होती है। तो ये लक्की ग्रुप है ना, चांस लेने वाला ग्रुप है। दूसरे सोचते रहते हैं कब जाएंगे, और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली है, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्तात्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना, कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है। तो जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना, तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप नियंत्रण देने की मेहनत करते थे, और अभी स्वयं आने का ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है। वो कहते हैं हम चले, और आप कहते हो
अभी अभी समय नहीं है।
समय नहीं है, और क्या कहते हो?
नहीं अभी।
वो कहते हैं हम चले कहाँ?
माउंट आबू
मधुबन। और आप कहते हो?
जगह नहीं है, साधन बैठा तो नाना है।
जगह नहीं है आप कहते हो नंबर नहीं है। तो ये है हिम्मत है बच्चे मदद है बाप का प्रत्यक्ष रूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को, मुरली किस पर चल रही है? त्रिकालदर्शी पर, तीनों काल। सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। बाबा ने कहा मुरली में सदा किसकी प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले, कल सुना ना, अनुभव की प्रयोगशाला और लाइट, तो यूज करेंगे उसका। बाबा ने कहा वो साइंस वाले क्या करते हैं, लाइट पर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप भी लाइट पर एक्सपेरिमेंट करते हो। आपका लाइट कौन सा है? आत्मिक लाइट, परमात्मा लाइट और स्थिति का लाइट। वो पहले स्वयं पर प्रयोग करते हैं और फिर संगठन में प्रयोग कर, बड़ो बड़े लार्ज स्केल जिसको कहते हो उस पर प्रयोग करते हो। बाबा कहते हैं सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को, प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? एकांत में। जितना ज्यादा एकांत उतनी बुद्धि एकाग्र। एकांत और मौन ये दो अनिवार्य शर्तें हैं अध्यात्म की। बिना एकांत के और बिना मौन के आत्मा स्वयं तक नहीं पहुंच सकती। स्थूल एकांत भी और स्थूल मौन, मुख का मौन भी, दोनों भी उतने ही आवश्यक है जितना मन का मौन और जितना आंतरिक एकांत। स्थूल एकांत की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता है। तो कौन सी प्रयोगशाला है ये? इस प्रयोगशाला में अंतर्मुक्ता की, स्वयं के अंदर जाना, वहां पर सारे प्रयोग करना। कौन से प्रयोग करने हैं, किस किस पर प्रयोग करने, कल सुना ना, ज्ञान गुण शक्ति पर। आठ शक्तियां, 36 गुण और ज्ञान की कोई भी पॉइंट, उसको लेकर उसके ऊपर प्रयोग करना। सदा अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को। बाप की मदद कैसे अनुभव होगी? हिम्मत से। असंभव से असंभव कार्य करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर कल कहा ना, तुम सब कौन हो? कल की साकार मुरली में था ना, हनुमान हो। कौन हो? महावीर हो। सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को, तो अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली आत्माओं को, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाना है जिसमें अनुभव के प्रयोग करने हैं, बोल के प्रयोग, भावनाओं के प्रयोग, वृत्ति दृष्टि दृष्टि के प्रयोग। किसी को आत्मा देखो देखे तो क्या होता है, किसी को देह देखे तो क्या होता है? देह देखने पर क्या क्या भावना उत्पन्न होती है और आत्मा देखने पर क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती है, ये प्रयोग। देह को देखा, अब आगे क्या क्या होता है? स्वयं स्वयं को की स्टडी करना, पहले स्वयं की स्टडी करना, पहले स्वयं पर स्टडी करना है। आत्मा देखा, अब कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही है? कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है और हम उसे देह देख रहे हैं, तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा, अहंकार जागृत होगा। कोई क्रोध कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है और हम उसे आत्मा देख रहे हैं, तो हमारी भावनाएं तुरंत बदलेगी। तो ये है दृष्टि के प्रयोग, भावनाओं के प्रयोग। किसके प्रति कौन सी भावना रखनी है? निगेटिव भावनाएं, पॉजिटिव भावनाएं, सकारात्मक नकारात्मक। नकारात्मक भावना रखने के बाद स्वतः ही बोल भी वैसे ही निकलते हैं, करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही निकलते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में तिरस्कार भरा है, घृणा भरी है और वो सामने आ जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ता है क्या बोलना है, जो निकलता है वो स्वतः ही तिरस्कार पूर्ण निकलता है। तो भावनाओं के ऊपर प्रयोग, बोल के ऊपर भी प्रयोग। अगर जबरदस्ती भी अच्छे बोल बोले गए, अंदर नहीं है फिर भी, तो उसका प्रभाव फिर भी अच्छा ही होगा। तो बोल के ऊपर प्रयोग, गुणों के ऊपर प्रयोग। एक यदि गुण उठाया जाए, अनुशासन, इस पर क्या प्रयोग करेंगे? आज ऐसा जी रहे, अभी इस कार्य में थोड़ा अनुशासन से जिए, आलस्य और अलबेलापन को थोड़ा बाजू में किनारे कर, तो जो परिणाम होगा वो कुछ और होगा। उसमें अनुशासन भर दिया, अपने कार्यकलाप, जो भी क्रियाएं, जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें अगर अनुशासन भर दिया जाए और अनुशासन के बिना किया जाए तो क्या रिजल्ट है? ये रिजल्ट देखना है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे नहीं बढ़ रहे। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, सीखना और आगे बढ़ना। गलतियां हो रही है, हम उसका पश्चाताप कर रहे हैं थोड़ा बहुत और आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वो गलती फिर रिपीट हो रही है। रुक कर उस पर थोड़ा सोचना, ये क्या हुआ? जीवन में हुई जो महान गलतियां है, बैठ कर वो क्यों हुई? कौन सा वो कारककर्ता फैक्टर था जिस वजह से वो हुई? उस कारक को ढूंढना, क्यों? क्योंकि भविष्य के लिए, फिर वो ना हो। उसकी गहराई और तह तक जाना कि ये वो कारण था। हम सीधा चल रहे थे और अचानक एक कारण आया, उस कारक की वजह से, उस कारण की वजह से ये गलती हुई थी। वो कारण फिर अगर आएगा फिर गलती होगी, क्योंकि उसको मिटाया नहीं अभी तक जड़ से। तो उस पर भी प्रयोग करना, भावनाओं पर, बोल पर, ज्ञान की कोई पॉइंट पर। बाबा ने कहा है कल, तुम हरेक को धनुष को तोड़ना है। कल था ना मुरली में, तुम हरेक को इस धनुष को तोड़ना है। क्या हमने तोड़ा है? तुम एक एक महावीर हो, तुम एक एक ने काम को जीता है, विकारों को जीता है। क्या हमने जीता है इस पर सोचना, थोड़ा समय देना उस पर। मुरली में कोई ऐसी दो तीन ऐसी पावरफुल पॉइंट्स रहती है, उनको वहां से कैच कर लेना और फिर उस पर प्रयोग करना अपने जीवन में। वाइब्रेशंस का हम पर क्या प्रयोग है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग होता है, कोई एक सब्सटेंस है वो किसी केमिकल में डालो तो वहां क्या हो रहा है और केमिकल का उसके ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, दोनों का स्टडी करना। जैसे मेडिसिन में एक होता है, जो भी दवाई हम लेते हैं, एक गोली है, बीपी की गोली, शुगर की गोली, एंटीबायोटिक, कुछ भी है, लेते ही शरीर में गई तो उस गोली का शरीर में क्या असर हुआ, शरीर पर क्या असर हुआ, फिर दूसरा मतलब वो गोली शरीर के साथ क्या कर रही है, फिर शरीर उस गोली के साथ क्या कर रहा है, और वो गोली अगर कोई दूसरी गोली है तो उस गोली गोली के बीच में क्या हो रहा है। सबसे पहले को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, सेकंड फार्माकोडायनेमिक्स होता है, और तीसरा होता है ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन। गोली शरीर में गई, वो गोली शरीर में क्या करेगी, अगर कोई फोड़ा है तो वहां क्या करेगी, वो शुगर है तो क्या करेगी, शुगर को कम करेगी, बीपी है तो बीपी को कम करेगी। तो वो गोली शरीर के साथ कुछ कर रही है और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे। वो गोली ने शरीर के साथ कुछ किया, अब शरीर उस गोली के साथ क्या कर रहा है, शरीर उसको मेटाबोलाइज करके बाहर फेंकता है 24 घंटे के अंदर। उसका काम वो गोली ने पूरा किया, वो लीवर में जाएगी, किडनी में जाएगी और बाहर जाएगी किसी ना किसी मार्ग से। ये शरीर ने उस गोली के साथ किया। तीसरा, वो गोली और उसके साथ में ही उसकी दूसरी बंदूक गोली जो है वो उस गोली के साथ क्या करता है। उसी तरह हम परिस्थिति के ऊपर, परिस्थिति आई, हमने परिस्थिति के ऊपर क्या किया, परिस्थिति ने हमारे ऊपर क्या किया, इसका स्टडी करना। इस लेबोरेटरी में बैठकर यही करना है, क्या क्या हो रहा है। हम अभी यहां बैठे हैं, मधुबन में है, सब अच्छा है। बाहर जाने के बाद उस वातावरण का हम पर क्या प्रभाव पड़ा, वो वातावरण फिर यहाँ के यहाँ का भी हो सकता है, शांतिवन का भी हो सकता है। यहाँ क्या स्थिति थी और वहां जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ क्या स्थिति थी और दो दिन के लिए कहीं बाहर गए, उस वातावरण का कुछ प्रभाव पड़ा कि बस ठीक थे। ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, रात भर की जर्नी है, वहां पर भी अपने आप उठे ट्रेन में कि अपने आप को समझा दिया कि दिन में तो बहुत थके थे, अभी देखेंगे उधर उठने के बाद सेंटर पर। यहाँ तो हम मुरली का चिंतन किया, वहां जाने के बाद हमारे पास बहाना है, एक रेडीमेड तैयार बहाना है, क्या कि बहुत बिजी है उधर, ये बहाना पहले से है, तो इसके लिए मुरली पे अभी स्टडी नहीं हो सकती, उस दिन का छूट गया। परिस्थिति पर ने हम पर क्या प्रभाव डाला, और सब कुछ परिवर्तनशील है, हर एक दिन नई परिस्थिति आएगी। आज हमारा अमृत वेला यहाँ है, आज मुरली का चिंतन यहाँ है, आज ज्ञान योग कर रहे हैं, कल ये नहीं होगा, कल कुछ और होगा, परिस्थिति कुछ और होगी, पर हमारी धारणाएं वैसी रहती है कि वो भी बदलती है परिस्थिति के साथ। इसका प्रयोग करना है, इसकी स्टडी करना है, ये दिन रात यही स्टडी करना। कुछ कुछ प्रयोग ऐसे है कि केवल स्टडी करना, बस देखना ये हुआ। हम कुछ कुछ बातों के बारे में कुछ खास कर नहीं सकते, ये हुआ। तो बाबा कहते हैं कौन सी प्रयोगशाला है ये, सदा, वो भी सदा शब्द जोड़ा है, अंतर्मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को। योगी बनना, ज्ञानी बनना, ध्यानी बनना, यहां बनना है प्रयोगशाली आत्मा। दिन रात कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहना, स्वयं पर, स्वयं को देखते रहना। रात को बैठकर देखो इन परिस्थितियों का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये नहीं सोचा, अगर ये नहीं देखा, ऐसे ही छोड़ दिया उसको, तो फिर वो परिस्थिति आएगी, फिर हमको हराएगी। आज एक रीति से हराया, कल कोई और रीति से हराएगी। माया एक ही रूप से नहीं आती, अभी शायद संडे या कभी और की मुरली में है, माया को भी नवीनता बहुत प्रिय है, वो भी नया नया रूप धारण करके आती है। इसके लिए ये प्रयोग करना बहुत 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 जरूरी है। तो चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को, समय के महत्व को जानने वाले, शायद परसों की मुरली में था ना, किसी और के साथ समय वेस्ट नहीं करो, परसों ही था, जगमुई जरमुई और किसी और के साथ में समय वेस्ट नहीं करो। और कोई दूसरा आ जाए आपका समय वेस्ट करने तो क्या करेंगे कुमुद बहन, कोई दूसरा आ जाए आपका समय वेस्ट करने तो क्या करेंगे? पॉजिटिव नहीं, वो पॉजिटिव लेकर ही आया है पर समय वेस्ट करने आया है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। हाँ, स्थिति ऐसी हो कि वो आए ही ना पहले, तो अगर कोई आ रहा है इसका मतलब उसके पूर्व अनुभव है। हमने पर उसने देखा कि एक दो बार तो आपने बहुत ध्यान से सुना है उसकी बातें, तो उसकी हिम्मत भी बढ़ गई ना, फिर तो आप ही के पास आएगा वो, क्योंकि आपने सुना उसको और आएगा बराबर। इंटरनेशनल योग है, उसके 5 मिनट पहले आएगा, 10 मिनट पहले आएगा, यहाँ वहां की बातें सुनने सुनाने या अपनी कोई और नित्य नई समस्याएं जो है वो सुनाने। कोई दूसरा टाइम पर उसका वो आए ही ना, बस यही उसका उत्तर है। डर लगे उसको, इनके पास नहीं जाना है, वेस्ट करने, व्यर्थ की बातें सुनने सुनाने। तो क्योंकि तुम्हारा समय बहुत वैल्यूबल है, बाबा ने कहा है, सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिमान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को, क्या बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ऐसी आत्माओं को, बाकियों को नहीं। दादियों से मुलाकात, आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहती हो, दादियों से बाबा पूछ रहे हैं, सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है, नए नए इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नए नए नई नई विधि की टचिंग होती जाती है, क्योंकि जो निमित्त है उसको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको क्या होगा, नए नए सेवा के प्लान्स, आज ये करो कल वो करो, आज ऐसा करो कल वैसा करो, तो नई नई बातें टच होती है उनको, ये तो विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। जितनी महान कार्य है वो जन्म कहाँ लेते हैं, संकल्पों में, उनका जन्म होता है संकल्पों में, और महान संकल्प अमृत वेला टच होते हैं आत्मा को, और उसमें भी जो विशेष आत्मा है, जो निमित्त आत्मा है, जिनके एक संकल्प से कितनी सारी सेवा होने वाली है, उनका एक एक संकल्प जो उनको टच होता है, जैसे दादी जी को देखा ना, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, अभी गीता पाठशाला खोलो, अभी ये करो वो करो, ये सब टचिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि अध्यात्म ऐसी चीज है कि जितना मन सूक्ष्म होते जाता है उतनी सूक्ष्म बातें पकड़ में आने लगती है। स्थूल व्यक्ति जो है, स्थूल जो चीजें है, जो उठते हैं अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं और सारा दिन भर थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, ये एक तरफ, एक है बुद्धि सूक्ष्म होती जा रही है, इतनी सूक्ष्म होती जा रही है कि जो वाक्य पहले पढ़ते थे उसका कोई असर नहीं होता था, उतनी समझ में नहीं आती थी, अभी उसके नए आयाम दिखाई पड़ रहे हैं। वही वाक्य, वही मुरली सुनी है, पढ़ी है, परंतु अब पढ़ रहे हैं तो कुछ और ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बुद्धि की जो लेवल है वो सूक्ष्म होती जा रही है। केवल सेवा करने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे, सेवा तो उधर भी की जा सकती है, सेंटरों पर भी सेवा है, यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, बुद्धि को सूक्ष्म करना, वो होगी तपस्या से, तपस्या ही एकमात्र लक्ष्य है जिसलिए यहाँ आए थे, इस लक्ष्य को भूलना नहीं है। केवल ये कहकर संतुष्ट नहीं हो जाना, मेरी सेवाएं तो बहुत अच्छी है, सब संतुष्ट है, अपने स्थिति के लेवल को कितना उठाया है ऊपर, लक्ष्य ज्ञान और योग ही हो सकता है, बाकी नहीं। सेवा तो किसी भी संकल्प के साथ सेवा करो, अच्छी सेवा होगी, आदत पड़ गई उसकी सेवाओं की। इसके लिए अगर नई नई बातों की टचिंग होनी है तो सबसे पहला प्यूरिटी और दूसरा समय, दो चीजें टचिंग होगी समझ में आएगा। जितनी प्यूरिटी की धारणा मजबूत होगी उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व समझ में आएगा। जितनी प्यूरिटी मजबूत होगी उतनी ही जो गुण है जिनके बारे में हम कुछ ज्यादा सोचते नहीं थे, अब उसके ऊपर चिंतन चलने लगेगा। अगर देखा जाए तो सबका आधार प्यूरिटी ही है। अगर वहीं पर हलचल है, अगर वहीं पर देह का आकर्षण है, तो ये समझ में नहीं आ सकता। अगर कोई बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का या हिंदी लिटरेचर का कोई व्यक्ति आ जाए, वो कहेगा ये तो मैं मुझे बहुत समझ में आ जाएगा, ये तो सिंपल हिंदी है, नहीं हो सकता। कोई लेखक है जिसने किताबें लिखी है, कोई पत्रकार है जो रोज आर्टिकल लिखता है, कि उसको बोलो ये पढ़े और धारण करे, नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए और इसकी धारणा के लिए जो बातों की आवश्यकता है, क्योंकि ये पारलौकिक बातें हैं, इस संसार की ये बातें नहीं है, इनको समझने के लिए वो धारणा इतनी मजबूत चाहिए। और वो प्राप्त करने के लिए अगर कितने दुख भी उठाने पड़े तो उठा लो, वो धारणा में मजबूत होने के लिए। अगर उस देह भान से मजबूत से निकलने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि हमको इसको समझने और इसको समझने के लिए वो बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये होना है। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्सव बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? निमित्त आत्माओं को उमंग उत्साह बढ़ाने के और परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने की। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, शायद यही था वो। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनाती हो ना, सुनती हो ना, दादियों को कह रहे हैं, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को उमंग उत्साह में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, यहीं पर है वो भी तो नवीनता लाएगी, पुरानी विधि से अपना नहीं बनाएगी। जो चाल उसने चली है पहले, इस बार वो चालबाज है, उसकी जो क्या कहा, बाजीगर है वो, संडे की मुरली में कहा ना, माया बाजीगर है, हर बार एक नया रूप धारण करके आकर आपको गिराती है। इसके लिए जो कर्म क्षेत्र है हमारा, वो ऐसे है जैसे कि युद्ध का मैदान। जैसे कोई योद्धा युद्ध के लिए जब जाता है तो कैसे जाता है? तैयारी करके जाता है ना। इसके लिए जब अपने डिपार्टमेंट में एंट्री करो तो कहां समझो कहां जा रहे हो? युद्ध स्थान में जा रहे हो, युद्ध लड़ाई जाते समय तैयारी करते हो, तो वो सब शस्त्र और अस्त्र सब साथ में लेके जाना, कवच मुकुट जो भी है सब कुछ पहन के जाना। वहां जाना ही, वहां जाते ही चालू होता है संघर्ष, और एक दिन नहीं हर दिन, और शत्रु हर दिन नए नए वस्त्र धारण करके आता है, कभी अदृश्य हो जाता है, कभी आकाश में, कभी जमीन पर, कभी उसकी सेना दिखाई देती है, कभी परिचित से लगते हैं माया, कभी एकदम ही नया रूप है। दिखाता था ना बाबा ने, ये बाप का ज्ञान है या माया है, इसको पहचानना आना चाहिए। ये परमात्मा ज्ञान है या माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी, क्योंकि रूप उसका इतना सूक्ष्म होते जाता है कि हम तो ये जान ही नहीं पाते ये भी माया है। ऐसा भी हो सकता है। और वो जब तक सोचते हैं तब तक पराजय तो हो जाती है। तो क्या सुना पूरी मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? त्रिकालदर्शी स्थिति, दिव्य बुद्धि के बारे में कह रहे हैं, और प्रयोग, जीवन को प्रयोगशाला बनाने के लिए कह रहे हैं। तो रोज कोई ना कोई प्रयोग करते रहना है। एक जो है वो है सदा त्रिकालदर्शी, दूसरे जो है वो कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी, और तीसरे जो है वो अलबेले अलबेली बुद्धि। और एक चीज जो बाबा ने कही थी यहाँ पर, संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ बीज को। सारा काम जो करना है वो कहाँ करना है? संकल्प के स्तर पर सारे ही काम। जितना संकल्प शक्तिशाली होंगे बाकी स्वतः ही शक्तिशाली होगा। जितना हम उसकी गहराई में जाएंगे, कल जो कहा था ना, विज्ञान क्या करता है? स्थूल की ऊर्जा को खोजता है, और हमें किसकी ऊर्जा को खोजना है? चेतन की ऊर्जा। अनंत शक्तियां इसमें समाई हुई है, उन शक्तियों को खोजना, बहुत आगे बढ़ना है, थोड़े से अनुभव में रुकना नहीं है। थोड़े से अनुभव हो गए, बहुत अच्छी स्थिति हो गई, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। एक लकड़हारा था, रोज आता था, जंगल की लकड़ियां काटता था। वहां पे बैठे एक फकीर ने कहा, अरे तू कितना मूर्ख है, तुझे पता ही नहीं आगे लोहे की खदान है, तू वहां जा, एक बार लोहा खरीदा ले लेगा तो एक हफ्ते तक तुझे कोई चिंता नहीं, आराम से बैठ कर खाएगा। वो उसको बिल्कुल यकीन नहीं होता उसकी बात पर, वो आते जाते हैं आते जाते हैं। पर ये फकीर उसको रोज कहता है कि बस तू यही रह, लकड़ियां ही काटते रहेगा क्या सारी उम्र? तो वो कहता है, सोचता है कि जाना चाहिए, और जाता है तो देखता है सही में लोहे की खदान मिल जाती है उसको। तो इतना लोहा इकट्ठा करता है, इतना लोहा इसने तो कहा था एक हफ्ते का, वो एक महीने का ले लेता है। इतना सारा लोहा इकट्ठा करता है, अभी वो महीने में एक बार आता है बस। और जिस दिन आता है साधु, वो फकीर उसके ऊपर फिर हंसता है, अरे तू ये लोहे की खदान ही लेते रहेगा, आगे चांदी की खदान भी है, उस चांदी की खान तक तू जा। वो कहता है, फिर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि थोड़ा तो मिल गया, अभी क्या चाहिए, और एक महीना तो आराम से निकल जाता है उसका। तो वो सोचता है ये बात तो बराबर है, एक दिन जाता है तो वास्तव में चांदी की खान दिखती है, और फिर रोज वहां जाने लगता है। फिर वहां जाता है, इतना चांदी ले लेता है कि अभी 2 मास तक उसको आने की जरूरत नहीं, अभी 2-2 मास में आता है। तो अभी फकीर जब देखता है ये आना, फकीर उसके घर घर में जाता है फिर उसको बताने की, अरे तू चांदी की खान तक ही रुकेगा क्या, कि और भी आगे जाएगा? बोलते अभी और भी है क्या कुछ आगे? तो बोलते अभी तो सोने की खान है आगे, वहां जाओ। तो वो उसको भरोसा नहीं होता है, फिर भी एक दिन जाता है तो देखता है वास्तव में सोने की खान है। अब सोने की खान मिलने के बाद तो 6 मास में एक ही बार जाता है वो लेने सोना, और बाकी आराम से जिंदगी गुजारता है। अभी साधु फिर उसके घर जाता है और उसको कहता है तू बस यहीं रुकेगा? तो बोलता है अब क्या बचा है, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम कुछ भी दे दो। बोलते आगे तो हीरे की खान है, तुम वहां जाओ। तो वो उसको कहता है, अगर तुम्हें ये सारा ही पता है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे बता रहे हो और खुद क्यों नहीं लेते? तो बोलता है, देख मेरी आंखों में, शायद मैंने ऐसा कुछ पाया होगा जो सोने हीरे चांदी इससे भी कुछ बड़ा होगा, तब तो मैं तुझे ये छोटी छोटी चीजें तुझे दे रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं रखता, क्योंकि मैंने जो पाया है और मेरी आंखों में जो है वो देख, वो जो है मैं तुम्हें बाहर का बता रहा हूं, मैंने जो पाया है वो अंदर की सामग्री को पाया है, अंदर के आनंद के आनंद को पाया है। मेरा तो लक्ष्य ही है तुझे उस आनंद तक पहुंचाऊं, तू तो बस यहीं पर रुकना नहीं है, तुझे अंदर जो है वो तो उस हीरो से भी बड़ा है। तो ये मार्ग में भी ऐसा ही है, थोड़ा सा अनुभव हुआ, थोड़ा सा योग अच्छा लगा और थोड़ा सा आत्मिक दृष्टि हुई, तो वहां रुकना नहीं है और आगे बढ़ो। अभी केवल वो अभी तो केवल वो ये लोहा ही है, और आगे बढ़ो, चांदी आएगी और आगे बढ़ो, सोना आएगा और आगे बढ़ो, हीरे उससे भी आगे का मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख की क्या गिनती, वो निरंतर का अनुभव। तो इस मार्ग में निरंतर बढ़ते जाने, अगर कभी गिर गए फिर उठो और फिर चालू करो, फिर उठो और फिर चालू करो, रुकना नहीं है बस। थकना नहीं है, बस गिरते जाए तो वापस वापस उठो और फिर चलो, ये लक्ष्य है। गिरना है, संभलना है। अगर गिरे, गिरना तो नहीं है पर अगर गिरे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही विकराल है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड है, कि जिसका हमने कभी सोचा नहीं था वो भी हो जाता है। जो जो पेपर बहुत पहले आए थे और हमने सोचा हमने इनमें पास हो गए, अभी नहीं आएंगे, वो फिर आएंगे। बीए के पेपर में, एमए के पेपर में बीए का पेपर फिर देना पड़ेगा, अव्यक्त तो महावाक्य है। बीए की एग्जाम में, एमए की एग्जाम में आशीष भाई बीए का पेपर आएगा फिर, जो सोचा था हम तो बीए हो गए वो फिर आएगा, वो सारी परिस्थितियां फिर उत्पन्न होगी। जो सोचा था अब इसको पार कर लिया, अभी शायद कभी नहीं आएगी, फिर आएगी, नए नए रूप से आएगी। इसके लिए बढ़ते जाना है और रुकना नहीं है। अच्छा, शांति।